धवला पुस्तक 9 लेक्चर नंबर 8 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सौभसाहूणम् सिद्धादद्धट्टमला विशुद्धबुद्धिये लद्धसौवत्था तिहुवण शिरसे हरया पश्यन्तु भडारया सवे। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। ये चौथा है खंड वेदना नाम का और उसमें कृति अनुयोग द्वारा इसका विषय है और इस 9 पुस्तक के पृष्ठ संख्या 59 पर आ गए हम। 59 यहाँ रिद्धियों की बात चल रही थी और उसमें भी बुद्धि रिद्धि, क्योंकि मति ज्ञान का विषय चल रहा था अपना, तो उसमें हमने 4 देखे थे बुद्धि रिद्धि में, याद है कौन से? कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि और संभिन्न श्रोतृत्व। तो ये बीज बुद्धि, पहले हमने कोष्ठ बुद्धि की बात देखी थी, तो कोष्ठ बुद्धि का कारण क्या था ये पूछा गया था, तो उसमें कहा था धारणावरणीय का तीव्र क्षोभ। और बीज बुद्धि का कारण क्या है, तो अवग्रहावरणीय के क्षोभ से होती, ऐसा यहाँ बताया था, वो हमने कल पढ़ा था। अब ये नया सूत्र 8 का, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ। यानी 2 बुद्धि रुद्धि हमने देखी थी, एक थी कोष्ठ बुद्धि और दूसरी बीज बुद्धि। कोष्ठ बुद्धि में जो आचार्यों के द्वारा जो अन्य अन्य ग्रंथों का अभ्यास किया है, वो उसी ग्रंथ का, उसी विषय का अलग अलग, उसमें एक का दूसरे में कोई मिलावट नहीं होता, बराबर ख्याल में रहता है कि कौन से ग्रंथ का वो कौन सा अंश है, उसको कोष्ठ बुद्धि। जैसे अलग अलग कोठे करते हैं हम धान्य के वगैरह, और एक कोठे का दूसरे कोठे में नहीं डालते, जिसका उसमें रखते, ऐसे जिसका उसी में सारा ही, उनको सब याद रहता है, ये बात है। क्योंकि मति ज्ञान में लेना है, धारणा ज्ञान का तीव्र क्षयोपशम है, बस उतनी बात है। बीज बुद्धि में क्या है, जो नया सुनते हैं, भले वो अक्षरात्मक हो या अनक्षरात्मक हो, कोई लिंग से या यानी चिन्ह से या अक्षरों से, तो उसमें तो बीज रूप से कुछ उन्होंने सुना और उस यानी थोड़ा ही सुना और उसमें से सारा ही अर्थ उनके ख्याल में आ गया, उसको कहते हैं बीज बुद्धि। क्योंकि गणधर जो है वो केवल ओमकार ध्वनि सुनते हैं, तो उनके तो सभी द्वादशांग की रचना करते हैं, उनके ज्ञान में कितना सारा आ जाता है, उसको कहते हैं बीज बुद्धि। अलग अलग है उसके रिद्धियां, इसे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, वो तो धारणा संबंधी है और ये अवग्रह संबंधी है। अवग्रह ने जो नया ग्रहण करना है उससे संबंधी है इनका। अब आगे का 8 का हम पढ़ते हैं। नमो पदानुसारिणम, पदानुसारी रिद्धि के धारक जिनों को नमस्कार हो। ये सब मुनियों की बात चल रही है, परंतु उनको एक देश जिन कहकर जिनों को नमस्कार कह रहे हैं। यहाँ जिन शब्द की अनुवृत्ति आती है, अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी है। सूत्र में केवल क्या लिखा है, नमो पदानुसारिणम लिखा है, पदानुसारी जिनानम नहीं कहा, फिर भी वो जीर्ण शब्द वहाँ है, ये हम गृहित धरते हैं, उसको कहते हैं अनुवृत्ति। क्योंकि सूत्र की विशेषता होती है उसमें अधिक शब्द नहीं डालते, अक्षर भी कम से कम रखते हैं, इसलिए यहाँ वो जीर्ण शब्द उन्हें समझ लेना चाहिए। इसलिए पदानुसारी रिद्धिधारक जिनों को नमस्कार हो ऐसा कहना चाहिए। प्रमाण और मध्यम आदि पदों से यहाँ प्रयोजन न होने के कारण बीज पद का ग्रहण किया है। पदानुसार है ना, पद के अनुसार, ये पद के अनुसार पद क्या होते हैं, तो पद भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अर्थपद, एक होते हैं प्रमाण पद और एक होते हैं मध्यम पद। हमने वो समय ज्ञान चंद्रिका में देखे थे वो पद थी, जैसे हम अक्षर तो मालूम है हमें, ए बी सी डी ने अ ब क ड़, ये जो क ख ग घ, ये सारे अक्षर हुए और अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। कोई भी कमल, राम, मेघ, इसे अलग अलग अक्षरों के समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द को ही आप पद कहते हैं, वो एक पद है। पदों से वाक्यों की रचना होती है, उसको कहेंगे अर्थ पद, क्योंकि उस शब्द इकट्ठे रखने से हमें उसमें से कुछ अर्थ भाषित हो जाता है। हम व्याकरण में पढ़ते राम ने आम खाया, अलग अलग तीन शब्द रखे तो हमें उसमें से उसकी क्या क्रिया हुई वो बात ख्याल में आ गया, इसको कहते हैं अर्थ पद। एक होता है प्रमाण पद, यानी निश्चित अक्षरों का समूह उसमें होता है, पदों का यानी शब्दों का। पेज नंबर हम 60 पर आ गए हैं, अभी अभी हमने 8वां नंबर का सूत्र पढ़ा, पदानुसारी जिनों को नमस्कार। तो पद की बात चल रही है, पद के अनुसार, तो पद किसको कहना उसकी बात यहाँ चल रही है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी हमने पद संबंधी श्रुत ज्ञान के प्रकरण में पद की बात देखी थी, वहां पर थोड़ा ढूंढते हैं कहाँ मिले या, क्योंकि उसमें तीन प्रकार के पद बताए थे, अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। तो अभी मैंने अर्थ पद की आपकी बात बताई कि जो हमारे जो शब्द है उसको पद कहते हैं और ये पदों से वाक्य बनते हैं उसको हम अर्थ पद कहते हैं। 436, हाँ, वहाँ से श्रुत ज्ञान की शुरुआत हो गई है। उसमें तो पहले पर्याय पर्याय ज्ञान की बात, जहाँ अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है वहां से बात होगी। वहां हाँ अर्थाक्षर, ये पेज नंबर 470 के आगे बागे वहां पर होगा पद। पेज नंबर 471 है, 336 गाथा है। हिंदी में 471 हमने ढूंढारी का नंबर लिखा था, गाथा लिखने से ठीक पड़ेगा 336। देखो वहां तीन पद बताए हैं, अर्थपद, प्रमाण पद और मध्यम पद। अर्थपद तो मैं अभी बताया आपको कि अक्षरों के समूह को पद कहते हैं और वो निश्चित पदों के द्वारा हमको कुछ अर्थ भाषित होता है, उसके वाक्य बनते हैं। प्रमाण पद के लिए ये जो निश्चित संख्याओं के वो पद होते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे जो श्लोक है नमः समय साराय, 8 अक्षर, स्वानुभूत्या चकासते, फिर 8 अक्षर, पहली लाइन में 8 और 8 16 अक्षर और दूसरी लाइन में भी 8 और 8 16 अक्षर, यानी 32 अक्षरों का वो श्लोक हो जाता है। ऐसे अलग अलग जो छंद होते हैं उसके निश्चित अक्षर होते हैं उसको कहते हैं प्रमाण पद। और तीसरा होता है मध्यम पद, मध्यम पद है जिसके द्वारा द्वादशांक की रचना की गई है। तो कितने अक्षरों के समूह को यहाँ पद कहते हैं, तो 1634,83,07,888 इतने अक्षरों के समूह को, अपुनरुक्त अक्षर उसको कहेंगे पद। इस मध्यम पदों में जो हम ना पहला आचारांग 18,000 पद वगैरह वगैरह बात करते हैं, वहाँ उन पदों की बात आती है। अभी हमको यहाँ पदानुसारी में कौन से पद से प्रयोजन है वो यहाँ बता रहे हैं। देखो फिर से हम पढ़ते हैं 60 पृष्ठ पर, जिन शब्द की अनुवृत्ति आती है ने, सूत्र में तो नमो पदानुसारिणम कहा, परंतु पदानुसारी जिनान ऐसा समझना चाहिए। इसलिए पदानुसारी रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो ऐसा कहना चाहिए। अब कहते प्रमाण और मध्यम आदि पदों से यहाँ प्रयोजन न होने के कारण बीज पद का ग्रहण किया है। यानी बीज पद के अनुसार ये वो बीज बुद्धि अलग थे, वो तो बीज के अनुसार उन्होंने जान लिया था। ये बीज पद जो है पद का जो अनुसरण अर्थात अनुकरण करती है वो पदानुसारी बुद्धि है। बीज बुद्धि से बीज पद को जानकर बीज पद यानी वहां पर भी उसका जो समूह शब्दों शब्द ही लेना। पहले तो बीज बुद्धि से तो वो यहाँ नहीं लेना है। पहले हमने बीज बुद्धि देखी थी, बीज बुद्धि ने वहां तो ओम इतना ही कहा और उन्होंने उसमें से वो बीज बुद्धि से उसको उसका जान लिया। तो यहाँ कहते बीज बुद्धि से बीज पद को जानकर, यहाँ यह इन अक्षरों का लिंग होता है और इनका लिंग नहीं होता इस प्रकार विचार कर, क्या कहते हैं ये बीज बुद्धि से बीज पदों को जानते हैं और वो बीज पद के द्वारा कितने अक्षरात्मक जो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो कौन से अक्षरों के लिए वो बीज पद लागू होता है उसका चिन्ह उसका लिंग बताते हैं उसको। क्योंकि जो सुन रहे हैं बीज बुद्धि से जो ग्रहण करते हैं वो जरूरी नहीं कि अक्षरात्मक है, अनक्षरात्मक को भी वो बीज बुद्धि से ग्रहण करते हैं। तो वहां बीज पद को जानकर यहाँ इन अक्षरों का लिंग होता है इनका लिंग नहीं होता इस प्रकार विचार कर समस्त श्रुत के अक्षर और पदों को जानने वाली पदानुसारी बुद्धि है। ये मुख्य कि समस्त श्रुत के अक्षर और पदों को जानने वाली, देखो देखो बीज बुद्धि में तो उन्होंने बीज के द्वारा उन्होंने वो जान लिया। अब वो अक्षरात्मक मोसी जो द्वादशांग की रचना तो करते हैं तो वो अक्षरों को पदों को सबको जानते हैं ना। हमने देखा कि 1634 करोड़ 83 लाख 800 इससे एक पद होता है और इतने संख्यात हजार पदों से संघात होता है, संख्यात हजार संघातों से प्रति, वो पूरा समझ लेना 12 अंग सब वो हाँ 20 भेद है वो सब उनके जो कहते हैं समस्त श्रुत के अक्षर और पदों को जानने वाली वो पदानुसारी बुद्धि है। उन पदों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है। वह अक्षर पद विषयक नहीं क्योंकि उन अक्षर और पदों का बीज पद में अंतर्भाव हो जाता है। वह पदानुसार बुद्धि अनुसारी प्रतिसारी और तदुभय सारी के भेद से तीन प्रकार की, कल हमने उसको निकाल के देखा था। तो कहते बीज पद से अधस्तन पदों को ही बीज पद स्थित लिंग से जानती है वह प्रतिसारी बुद्धि है। बीज पद जो है उसके द्वारा उसके जो नीचे के जो पदों को यानी विशिष्ट एक जो विशिष्ट ज्ञान का जो भेद होगा विशिष्ट उस पद के नीचे वाले पदों को जान लेता है उसी बीज पद के द्वारा तो वो कहेंगे प्रतिसारी। और जो उपरिम पदों को ही जानती वो अनुसारी बुद्धि है। यानी वो बीज पद को उसने जाना उसके द्वारा ऊपर के सारे पदों को जान लिया वो अनुसारी उसके अनुसार सब ले जानते ऊपर का। और दोनों पार्श्वस्थ पदों को नियम से अथवा बिना नियम के भी जो जानती है वह उभय सारी बुद्धि है, दोनों की ओर जान लेते हैं। इन पदानुसारी जिनों को नत होकर भूमिपतित तो होकर, भूमिपतित यानी जमीन को टेक कर, साष्टांग जिसको कहते हैं, कृति कर्म करता हूँ यह सूत्र का अभिप्राय मुनिराजों के ये कृति कर्म बताए यहाँ, ये सब साधुओं के लिए बताते हैं। तो साधु पूरे जमीन पर ऐसा साष्टांग जिसको कहेंगे 8 अंग टेक कर जो नमस्कार करते हैं ये सूत्र का अभिप्राय है। हाँ यानी कोई ग्रंथ हम लेकिन यहाँ कोई एक शब्द हमने सुना वो शब्द के द्वारा आगे वाला सब जान लेना वो अनुसारी है, उसके पहले वाला सारा जान लेना वो तो प्रतिसारी है, दोनों ओर का जान लेना उभयसारी है। अब कहते हैं 61 पृष्ठ पर, यह किससे होती है समाधान। फुटनोट नहीं पढ़ा, पढ़ते हैं। देखो, बुद्धि वियक्षणानम पदानुसारी हवेदी तिविहप्पा। यानी जो बुद्धि, जो पदानुसारी बुद्धि है, वो तीन प्रकार की होती है। अक्षणान, अक्षणान है ना उसमें बीज और अक्ष ज्ञान। अनुसारी, परिसारी, जहत्तनामा, उभयसारी, वो अभी हमने देखे। आदि अवसान मध्य गुरुवदेशेन एक बीज पदम। यानी आदि यानी शुरुआत में, अवसान यानी अंत में या मध्य में, गुरु के उपदेश से एक बीज पदम गेहनीय ग्रहण करके यानी जानकर, यानी गुरु ने उनको एक बीज पद बताया। वो एक बीज पद बताया गुरु के द्वारा, तो उसको जानकर गेहनीय ने ग्रहण करके हेठिम गंथम बुज्जदी। गुरु ने तो एक बीज पद बताया और उसके द्वारा उन्होंने नीचे का पूरा ग्रंथ उन्होंने जान लिया। जा साच पड़ीसारी, उसको पड़ीसारी बुद्धि कहते हैं, यानी पड़ीसारी पदानुसारी। नियमेन अनियमेन य जो युगवम एगस्य बीज सद्दस्य। क्या कुछ कुछ रह गया ना? हाँ हाँ, मैं नीचे चली गई। सेकंड लाइन, गेन्नीय वरिम गंतम जा गिन्नदि सा मदिहु अनुसारी। और वो एक बीज पद के द्वारा उसको जानकर जो उपरिम ग्रंथ जानता है वो अनुसारी है। ये आदि अवसान मध्य वो सब जगह लगाया। गुरु के उपदेश से वो एक बीज पद जानकर नीचे के ग्रंथ को जानता है, वो पड़ीसारी है। हेट्ठी में गंधम बुज्झदी है ना, हेट्ठी मैंने नीचे के, हाँ वरी मैंने ऊपर का ग्रंथ। नियमेन अनियमेन ये जुगवम एगस्य बीज सदस्य वरिम हेट्ठी में गंथम जा बुज्झई उभय सारी सा। और ये नियम से या अनियम से, जो जुगवम यानी युगत पद एक ही बीज शब्द के द्वारा उपरिम और नीचे का दोनों ओर का ग्रंथ जान लेते हैं, वो उभय सारी है। अब आगे भी देखते, कुछ अलग बता रहे। पदानुसारित्वम त्रेधा, पदानुसारीपना तीन प्रकार का है, अनुश्रोतः प्रतिश्रोतः उभयथा चेति। उसी को श्रोत कहा उसको। एकम पदस्य अर्थम परतः अपश्रुत्य, एक पद का अर्थ अन्य से सुनकर, अन्य से ने गुरु के द्वारा सुनकर, आदौ अन्ते च मध्ये वा शेष ग्रंथ अर्थावधारणम पदानुसारित्वम। वो तो वो बीज पद अंत में होगा, मध्य में होगा, स्टार्टिंग में होगा, उसके द्वारा पूरा ग्रंथ जान लेना। किसी भी ग्रंथ के शुरुआत का, मध्य का या अंत का एक पद जानकर, बीज पद जानकर पूरा ग्रंथ जान लेना, उसको कहते पदानुसारी। अनुश्रोत परिश्रोत वो बोलते ना, प्रतिश्रोत और उभय था, यानी वो तो किसी से वो सुनकर उन्होंने एक ही पद जाना था। जैसे अभी एक सूत्र में एक कोई सूत्र बताया यहाँ पर, उसके द्वारा उसके पूर्व के सूत्र और बाद में आने वाले सब उसको जान लेते हैं। ग्रंथ के पहले वाला एक सूत्र जाने तो पूरा ग्रंथ जानना, या अंतिम एक पद जानकर पूरा ग्रंथ जानना, ये इतनी उनकी बुद्धि होती है। लास्ट लाइन, जो सुत्तपयेन बहुम सुयणनुधावई सुयमनुधावई पयानुसारोसो। जो सुत्तपयेन बहुम सुयम यानी अनुधावई, यानी थोड़ा सुनकर वो तो आगे का सब जान लेते हैं, आगे पीछे का, वो पदानुसारी होती है। अब यहाँ हम आते हैं, पढ़ेंगे 61 पृष्ठ पर, यह किससे होती है। देखो, कोष्ठ बुद्धि में धारणा आवरणीय को लिया था, बीज बुद्धि में अवग्रह आवरणीय को लिया, अवग्रह आवरण। अब यहाँ समाधान देखते हैं, इहावरणीय और अवायावरणीय के तीव्र क्षोभशम से होती है। हाँ होता है ना, हाँ मति ज्ञान के भेद है, पर बीज पद को तो जाना मति ज्ञान से ही। हाँ पर वर्तमान सुनना है ना, सुनकर उन्हें आगे पीछे का जान लिया, उसके उसके द्वारा अन्य पदार्थ को लेना, उसको ये उसी पदार्थ को जान रहे। एक सुनकर जो बीज पद के द्वारा पूरा अर्थ को ग्रहण किया उन्होंने, हाँ वो भी लेना, मति ज्ञान का ही भेद होगा वो। श्रुत ज्ञान कहने अन्य विषय को करने वाले वो श्रुत ज्ञान कहेंगे। यानी यहाँ और अब यानी उन्होंने उत्सुकता भी हो गई, उसने निश्चित भी किया, वो अपने बुद्धि से ही निश्चित किया। यहाँ मन का कार्य है ना, यहाँ पर ये इंद्रिय की तो बात है ही नहीं, मन के द्वारा उन्होंने जान लिया सारा। नमो संभिन्न सोदाराणम, संभिन्न श्रोता जिनों का नमस्कार हो, जिनों को इस पद की अनुवृत्ति आती है। सम एटले भले प्रकार, जो आता है ना सम शब्द, संयम ऐसा शब्द लगाते, बहुत जगह सम शब्द लगता है। सम्यक प्रकार अर्थात भले प्रकार, श्रोत्रेन्द्रियावरण के क्षोभशम से जो भिन्न अनुविद्ध है, भिन्न है अनुविद्ध है, वे संभिन्न कहलाते हैं, यानी जुदे जुदे हैं। संभिन्न ऐसे जो श्रोता, वे संभिन्न श्रोता है, कथंचित युगपत प्रवृत्त हुए अक्षर अनक्षर स्वरूप अनेक शब्दों के श्रोता संभिन्न श्रोता है, ऐसा निर्देश किया गया। यानी इनके जानने की ऐसी उनकी योग्यता है कि अक्षरात्मक और अनेक्षरात्मक अनेक शब्द हो रहे वहां पर, उसको सभी को जान लेते हैं एट ए टाइम। अब 19 नंबर की गाथा, अब वो एक सैन्य में कितना क्या क्या होता है उसकी बात बता रहे हैं। नवनाग सहस्राणी नागे नागे शतम रथाः, रथे रथे शतम तुर्गाः, तुर्गे तुर्गे शतम नराः। एक अक्षौहिणी में, जिसको सैन्य कहते ना, ये अक्षौहिणी सेना है, 9000 हाथी वो हाजिर हुआ है। शोभा ने कुछ बोला क्या? शोभा कुछ बोला? हेलो की है कहा जैसे मुझे लगा। एक औक्षौहिणी में 9000 हाथी, एक हाथी के आश्रित 100 रथ, नागे नागे शतम रथा, एक रथ के आश्रित 100 घोड़े, रथे रथे शतम तुर्गा, तुर्गे ने घोड़े, और एक एक घोड़े के आश्रित 100 मनुष्य होते हैं। यानी वो 100 सेना कितनी बड़ी होगी। अब पेज पलटने के पहले वो एक नंबर का फुटनोट हम कहेंगे, ऊपर लिखा है सोदारा संभिन्न सोदारा तिनिदिट्ठा, नीचे पढ़ते फुटनोट, सादिंद्य सुदनाना वर्ण नानम वीरियंतराय उक्कस खौ समय उदिद अंगो वंग नाम कम्मणि सो दुखस खिदिदो सो दुख उक्कस सो सोद उक्कस श्रोत के उक्कस खिदिदो बाहिम संखेज योन पयण से संठिय नर तिरियाणम बहुविह सद्दे अनेक प्रकार के शब्द समुठन्ते अवखर अणखर मये सोदूनम यानी सुनकर दस दिशासु पत्तेकम जम दिज्जदि पड़िवयनम तम चिय संभिन्न सोदितम। ये सादिंद्रिय के सोदिंद्रिय चाहिए, इसलिए मैं, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय होना चाहिए। कहाँ से है? त्रिलोक पन्नति, शायद वो सोदिंद्रिय सुदन अनावरण चाहिए। मैंने श्रोत्र इंद्रिय आवरण और श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षोभशम से तीनों को लिया, श्रोत्र इंद्रिय भी लिया, श्रुत ज्ञान भी लिया और वीर्यांतराय को भी लिया। तीनों के उत्कृष्ट क्षोभशम से उदित अंगोवंग नामकम मम्मी सोदुक्कस खिदिदो बाहिम, यानी श्रोत्रिंद्रिय के उत्कृष्ट स्थिति से बाहर संख्यज योन पये से यानी संख्यात योजन प्रदेशों में संठीय वहाँ स्थित नर और तिर्यंचों के अनेक प्रकार के शब्द समुत्थन्ते, अनेक यानी एट अ टाइम युग पर सबको सुनकर अवखर अनखर मय, यानी अक्षरात्मक भी है अनक्षरात्मक भी है। सोदुन में सुनकर दस दिशासु पत्तेकम, यानी दसों दिशा में से वो शब्दों को सुनकर जम दिज्जदि परिवयनम तम च्य संभिन्न सोदितम। दिज्जदि परिवयनम में शायद वो उसको सुनकर उसका उत्तर भी दे सकते, ऐसा कुछ होगा उसके अंदर। दिज्जदि यानी देते हैं, परिवयनम परिवचन देते हैं। आगे पढ़ते हैं, द्वादश नियोजन आयामे नव योजन विस्तारे, यानी बारह योजन लंबा और नौ योजन विस्तार वाले चक्रधर स्कंधावारे, चक्रधर की जो सेना होती है ना वो कैसे गजवाजी खरोष्ट्र मनुष्यादी नाम, यानी हाथी है, वाजी से क्या समझना, खरे ने वो तो खेचर को भी खर कहेंगे, खर का वैसे अर्थ गधे को भी खर कहते हैं, उष्ट्र ने ऊंट है, मनुष्य आदि अक्षर अनक्षर रूपानम नानाविध शब्दानाम युगपत उत्पन्नानाम, यानी युगपत उत्पन्न हुए नाना प्रकार के शब्दों को तपो विशेष बल लाभापादित सर्वजीव प्रदेश श्रोत्रेन्द्रिय परिणामात सर्वेशाम एक काल ग्रहणम संभिन्न श्रोतृत्वम। क्या कहना चाहते हैं? ये तपो विशेष के बल से इतने सारे शब्दों को एक साथ वो ग्रहण करते जानते, उसका अर्थ भी जुदा जुदा समझते हैं, एक साथ हो रहे हैं, फिर भी सबको एक साथ सुनकर उसका अर्थ भी समझते हैं। अभी इतनी बड़ी यानी बारह योजन और नौ योजन कितनी लंबी होती है, और चक्रवर्ती की सेना है, उसमें हाथी भी चित्कार यानी आवाज कर रहे, घोड़े वगैरह सब, मनुष्य भी यानी वो सैनिक भी जो कुछ, और अन्य भी कितने जो एक साथ सब तिर्यंच भी है, मनुष्य भी है, उनके सब अक्षरात्मक अनक्षरात्मक सारे ध्वनि सुनकर एक साथ उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। जो सुनई सवो मुनई सव विषय सव सोए हिम सुनई बहुए भी सद्दे भिन्ने संभिन्न सोवो, वही बात यहाँ पर भी बता रहे हैं। अभी तो यहाँ उन्होंने अक्षौहिणी का प्रमाण बताया, अब 62 पेज पर आते हैं। यह एक अक्षौहिणी का प्रमाण है, ऐसी चार अक्षौहिणी अक्षर अनक्षर स्वरूप अपनी अपनी भाषाओं से यदि युगपद बोले, क्या चार अक्षौहिणी चहु और दशो दिशा की बात बताई ना, एक अक्षौहिणी सेना इतनी होती है, बताया ना अभी हमने, अभी 9000 हाथी, हाँ चार अक्षौणी है चक्रवर्ती की सेना, चार अक्षौणी है होगी। तो अपनी अपनी भाषाओं से यदि युगपत बोले तो भी संभिन्न श्रोता युगपत सब भाषाओं को ग्रहण करके प्रतिपादन करता है, मैंने बोला ना उसको तो प्रतिवचन करता है। दिज्जदि परिवयनम ग्रहण करके प्रतिपादन करता है, इनसे संख्यात गुणी भाषाओं से भरी हुई तीर्थंकर के मुख से निकली हुई ध्वनि के समूह को युगपत ग्रहण करने में समर्थ ऐसे संभिन्न श्रोता के विषय में यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। क्या कहते हैं, इससे भी संख्यात गुणी भाषाओं से वो तीर्थंकर के जो मुख से निकली हुई ध्वनि जो है, वो तो इतनी भाषाओं में वो तो उसको ग्रहण हो जाता है, अन्य अन्य भाषाओं के माध्यम से वो ग्रहण करते हैं। तो ये तो चक्रवर्ती की वो तो ऑर्डिनरी बात है उनके लिए। शंका, यह किससे होती है, यानी उसमें कौन से कर्म की बात बता रहे हैं? तो कि बहुविध और क्षिप्र ज्ञानावरणीय कर्मों के क्षोभ से होती है। अनेक और अनेक प्रकार के, और क्षिप्र यानी बहुत जल्दी, इन संभिन्न श्रोता जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। अब अवग्रह इहा अवाय और धारणा रूप जिनों का, चूंकि इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है, अतः उन्हें पृथक नमस्कार नहीं किया। क्योंकि अवग्रह वर्णीय में तो बीज बुद्धि वाले आ गए, इहा और अवाय धारणा वर्ण में तो पदानुसारी आ गए, धारणा में कोष्ठ बुद्धि वाले आ गए, इसलिए उनको अधिक अलग से नमस्कार नहीं किया। रुजुमति जिनों को नमस्कार करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, अभी 10 नंबर को, नमो उजुमदिनम, रुजुमति मनपर्य ज्ञानियों को नमस्कार हो। ज्ञानी जिनों को क्यों नहीं कहा? आगे क्या लिखते हैं? विपुलमति जिनों को लिखा है आगे। इन्हें रुजुमति मनपर्य ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति तो लेते ही है सब जगह। तो नहीं, ठीक है, उन्होंने लिखा है, उसको कुछ नहीं करना है, हमको समझना है रुजुमति मनपर्य ज्ञानी जिनों को नमस्कार, ये ऐसा उसका अर्थ होता है। दूसरे की मति अर्थात मन में स्थित अर्थ, अर्थ ने पदार्थ, उपचार से मति कहा जाता है। रुजु का अर्थ है वक्रता रहित। रुजुता किस कारण से है, उसका समाधान, यथार्थ मति का विषय होने से, यथार्थ वचनगत होने से, और यथार्थ अभिनय अर्थात शारीरिक चेष्टागत होने से उक्त मति में रुजुता है, जिसको हमने सरल, और कोई है ना टेढ़े मन वाले होते हैं ना, अंदर कुछ बाहर कुछ वगैरह, रुजु है मति जिसकी, वह रुजुमति कहा जाता है। सरलता से मनोगत, सरलता से वचनगत और कायगत से अर्थ को सरलता से जानने वाला, और उससे विपरीत वक्र अर्थ को न जानने वाला मनपरे ज्ञानी रुजुमति कहा जाता है। ये वक्र अर्थ को नहीं जानता, उसमें से मन वचन और काय से जो सरल अर्थ है उसको ग्रहण करता है, और जो विपुल मति है वो सरल को तो ग्रहण करेंगे ही करेंगे, उसमें से वो वक्र अर्थ को भी ग्रहण कर लेते हैं। शंका, रुजुमति मनपरे ज्ञानी मन से अचिंतित, वचन से अनुक्त यानी नहीं बोला हुआ, और अनभिनीत यानी अभिनय नहीं किया, काया से कोई एक्शन नहीं की थी, अर्थात शारीरिक चेष्टा के अविषयभूत अर्थ को क्यों नहीं जानता है, यानी वो विपुल मति उसको भी जानता है, ये कहते हैं। अभी जो मन के द्वारा चिंतन नहीं किया उसको भी जानेंगे, उसका समाधान नहीं, क्योंकि उसके विशिष्ट क्षोभशम का अभाव है। विपुल मति का क्षोभशम ज्यादा है तो वो उसको भी जान लेते हैं। मति ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान से मन वचन व काय के भेद को जानकर पीछे वहां स्थित अर्थ को प्रत्यक्ष से जानने वाले मन परे ज्ञानी का विषय यानी मति ज्ञान अथवा शुद्ध ज्ञान से उन्होंने मनोवचन काय के भेद को जाना और बाद में वहां स्थित अर्थ यानी उसके द्वारा जो पदार्थ बताया जाता है उसको प्रत्यक्ष जानते, वो आत्मा द्वारा जानते, कोई इंद्रिय के द्वारा नहीं जान रहे। पहले तो मति ज्ञान ने काम किया वहां, क्योंकि मन के द्वारा उन्होंने मति ज्ञान के द्वारा मनोवचन काय को जानकर फिर उसमें स्थित पदार्थ को जाना। जैसे मन परिज्ञानी के सामने कोई जीव खड़ा है तो उन्होंने उसके मति ज्ञान से मन के द्वारा उसके मन को जानकर फिर उसके जो पदार्थ है उनको उन्होंने वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जाना। उसका विषय मन परिज्ञानी का विषय द्रव्य क्षेत्र काल व भाव के भेद से चार प्रकार का है। जैसे हमने अवधि ज्ञान के विषय देखे थे वैसे यहाँ पर भी उसके अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी वेरिएशन हो गए। इनमें रुजुमति मन परे ज्ञान जघन्य से एक समय संबंधी औदारिक शरीर के निर्जरा द्रव्य को जानता है। द्रव्य में किसको लेना, एक समय में औदारिक शरीर का जो एक समय प्रबद्ध छूट कर निकलता है निर्जरा कहते हैं उसको, एक समय प्रबद्ध बनता है और अलग अलग समयों में बंधे हुए एक समय प्रबद्ध निर्जरा होती है, उतने द्रव्य को वो जानेगा। हाँ वो वहीं पर पड़ी रहेगी विश्लेषोपचय रूप से या कई लोग आकाश कहीं भी एंड तक चली जाएगी, पर कितने परमाणु शरीर रूप से अशरीर रूप हो जाएंगे। जैसे हम कहें कर्म से अकर्म रूप होते हैं ऐसे शरीर से अभी वो शरीर नहीं कहलाएंगे, भले विश्लेषोपचय रूप से पड़े रहेंगे। जैसे बाल यहाँ से छूट गया और उधर ही पड़ा रहा, वो अभी बाल नहीं अपने शरीर का अंग नहीं होगा, वो निकल गया अभी। हाँ ऐसे परमाणु कितने चले जाते हर समय अनंत चले जाते। शंका, वह औदारिक शरीर की निर्जरा जघन्य उत्कृष्ट और तद्व्यतिरिक्त भेद से तीन प्रकार की है, उनमें से किस निर्जरा को वह जानता है। समाधान, तद व्यतिरिक्त यानी जो उत्कृष्ट भी है जघन्य भी नहीं, तद व्यतिरिक्त औदारिक शरीर की निर्जरा को वह जानता है क्योंकि यहाँ सामान्य निर्देश है। उक्त ज्ञान मनपरे की बात चल रही ना, उत्कृष्ट से एक समय संबंधी इंद्रिय निर्जरा को जानता है। देखो देखो क्या कहना चाहता है, पहले में पहले पूरे औदारिक शरीर की निर्जरा और कहते एक इंद्रिय एक समय संबंधी इंद्रिय निर्जरा को जानता है, यानी पूरे शरीर नहीं उसमें से इंद्रिय संबंधी निर्जरा ली। किसी एक इंद्रिय का वो भी चक्षु इंद्रिय के बताएंगे शायद। देखो आगे बढ़ते आगे उसकी चर्चा है। शंका, औदारिक शरीर निर्जरा और इंद्रिय निर्जरा के बीच कोई भेद नहीं है क्योंकि इंद्रियों से भिन्न औदारिक शरीर का अभाव है। शरीर की निर्जरा कहो या इंद्रियों की कहो एक ही बात है ये कहते हैं। शंकाकार पूछते हैं। समाधान, इस शंका पर कहते कि यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यहाँ सब इंद्रियों का ग्रहण नहीं है। तो कहते तो फिर किस इंद्रिय को ग्रहण किया है। उसका समाधान, चक्षु इंद्रिय को ग्रहण किया है क्योंकि वह शेष इंद्रियों की अपेक्षा अल्प प्रमाण वाली है अथवा अपने आरंभक, वो आरंभक बराबर लिखना, अपने आरंभक पुद्गल स्कंदों की सूक्ष्मता से युक्त है। यानी पूरे औदारिक शरीर की जो निर्जरा होगी उससे चक्षु इंद्रिय ने वो पूरा आंख नहीं लेना, जहां वो इंद्रिय जो है जहां से वो ग्रहण रूप कार्य होता है उसको चक्षु इंद्रिय कहा, तो वहां जितनी उस द्रव्य इंद्रिय की जो निर्जरा होती है उसको लेना वो कम है, वो उसका उत्कृष्ट है और जघन्य यानी उत्कृष्ट का भेद और सूक्ष्म तक जानता है ये कहना चाहते हैं। हम जब अवधि ज्ञान की बात करते थे ना जघन्य देशावधि, तो वो तो कितना बड़ा स्कंध को जानता था, कितना जानता था याद है, द्रव्य में किसको लिया था, औदारिक शरीर प्लस विश्रसोपचय डिवाइडेड बाय लोक, अब ये कौन सा लिया, औदारिक का समय प्रबद्ध लिया, क्योंकि जितना ग्रहण होता है उतना ही निर्जरा होती है, यानी उसके अनंत वे भाग प्रमाण द्रव्य को जानता है, यानी इसकी विशुद्धि ज्यादा है ना इनकी, और सूक्ष्म को तक को जान रहे हैं, और वो भी दूसरे के मन में स्थित सूक्ष्म को, ऐसे उस प्रदेश में स्थित की बात नहीं, वो कौन से चीजों के बारे में, स्कंधों के बारे में विचार कर रहे हैं उसकी बात चल रही है।
ज्ञान जो भी है वो निर्जरित होने वाले कर्मों को जान सकता है, ये बात बताइए।
नहीं, निर्जरित होने वाले कर्म को नहीं, वो द्रव्य का प्रमाण कितना है, एक समय संबंधी औदारिक शरीर की निर्जरा द्रव्य को जानता है,
यानी वो निर्जरित होते हुए जान सकता है, ऐसा बताया ना।
निर्जरित होते हुए जानेगा तो अवधि ज्ञान कहलाएंगे ना, वो मनो, एक मिनट इसमें क्या लिखा है देखती हूँ मैं, जीवकांड में, यानी वो द्रव्य का साइज बता रहे शायद। देखो यहाँ तो क्या लिखा है, उसका विषय क्या है, त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को वर्तमान काल में कोई जीव चिंतवन करता है, उस पुद्गल द्रव्य को रुजुमति मनपरे ज्ञान जानता है, और त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को किसी जीव ने अतीत काल में चिंतवन किया था या वर्तमान में कर रहा है या अनागत में करेगा, उसको विपुलमति मनपरे जानता है। अभी उसमें उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव बताया होगा ना, उसकी जघन्य और उत्कृष्ट बताया होगा ना यहाँ पर, मनपरिज्ञानी की बात है। देखो द्रव्य प्रति, क्षेत्र प्रति, काल प्रति, भाव प्रति, जीव द्वारा लक्षित यानी चिंतवन किया हुआ रूपी पुद्गल, यानी वो कितना द्रव्य निर्जरित हुआ नहीं कहते, उसके वो किस पुद्गल संबंधी, अभी यहाँ जो लिखता है देखो, रुजुमति मन परे ज्ञान जघन्य पने से तो औदारिक शरीर के निर्जरा रूप समय प्रबद्ध को जानता है। औदारिक शरीर में पेज नंबर 555 जीवकांड 451 गाथा है, जितने परमाणु निर्जरित होते हैं उतने परमाणुओं के स्कंध को जघन्य रुजुमति मनपरे ज्ञान जानता है, उतने स्कंध को उसको जानता है। अगर निर्जरा होने वाले द्रव्य को जानता है ऐसा कहेंगे तो अवधि ज्ञान हो जाएगा, मन में जो स्थित है उसके जो जिस पुद्गल के इतने सूक्ष्म पुद्गल संबंधी वो जान रहा है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, जो चिंतवन कर रहा है उस पुद्गल स्कंध की साइज बता रहे हैं यहाँ पर। तथा उत्कृष्ट पने से नेत्र इंद्रिय की निर्जरा मात्र द्रव्य को जानता है। रुजुमति कहिए, पेज नंबर 555। हाँ, उतने साइज है उसका, यानी वो उतने परमाणुओं के स्कंध को जघन्य विपुल मति मनपरे ज्ञानी जानता है। यानी अभी जो हमने देखा था रुजुमति का जो विषय है द्रव्य का, तो उसको जो ध्रुवाहार का भाग देंगे तो विपुल मति का जघन्य हो जाएगा, यानी इतने छोटे स्कंध तक वो जानेगा, ये कहना चाहते हैं। नहीं, अवधि ज्ञानी तो डायरेक्ट परमाणु को जान रहा है, अभी किसी के मन में जो विचार चल रहा है उसकी बात चल रही है। हाँ। विपुलमति का जो, देखो विपुलमति का जो है ना, उसमें ध्रुहार का भाग देते जाओ और सूक्ष्म सूक्ष्म तक चले जाएंगे, तो असंख्यात कल्प कालों के जितने समय है उतनी बार ध्रुहार का भाग देंगे, तो देते देते अंत में जो प्रमाण रहेंगे उतने परमाणुओं के स्कंध को उत्कृष्ट विपुलमति ज्ञान जानता है। यानी तो हमारी इमेजिनेशन के बाहर की बातें होती है। अब रुजुमति का विषयभूत क्षेत्र जघन्य क्षेत्र पृथक्त्व कोष है, कुछ कोष, और उत्कृष्ट पृथक्त्व योजन है, और विपुलमति का जघन्य पृथक्त्व योजन यानी 8 और 9 योजन, और उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक तक को जानता है, 45 लाख योजन तक को जानता है, ये उसका उत्कृष्ट क्षेत्र बताया था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, अपने दवला में से पढ़ेंगे। यानी द्रव्य कहने से उसका साइज केवल लेना कि वो निर्जरा होने वाले द्रव्य की बात नहीं, उसका जो साइज है उतने स्कंध तक को जानता है। पेज नंबर 64 पर थे हम। दूसरी शंका, यह चक्षु इंद्रिय की बात हमने पढ़ी थी। हाँ, तीसरी शंका होती है वो, इसी इंद्रिय को ग्रहण किया गया है, किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान, यह गुरु के उपदेश से जाना जाता है। शंकाकार पूछते, घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय की अपेक्षा चक्षु इंद्रिय की विशालता देखी जाती है, वो तो बड़ा है उससे। समाधान, नहीं, क्योंकि चक्षु गोलक के मध्य में स्थित मसूर के आकार तारा को चक्षु इंद्रिय स्वीकार किया गया है। ये पूरा जो आंख ये दिखता है वो नहीं लेना है, अंदर जो है। शंका, चक्षु इंद्रिय की निर्जरा भी जघन्य उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त ने मध्यम भेद से तीन प्रकार की है, उनमें कौन सी निर्जरा का ग्रहण किया है। समाधान, तद व्यतिरिक्त निर्जरा का ग्रहण किया है, क्योंकि उसका सामान्य निर्देश है। जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य के मध्यम द्रव्य विकल्पों को तद व्यतिरिक्त रुजुमति मनपर्य ज्ञानी जानता है। पहले जघन्य का भेद बताए, उत्कृष्ट का बताए, इन बिटवीन वाले सारे मध्यम भेद हो गए। क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से वह गव्योति पृथक्त्व यानी पृथक्त्व कोष, वो गांव या गौवे ऐसा शब्द आता है ना, यानी पृथक्त्व कोष जिसको हम कहेंगे, पृथक्त्व यानी 8 से 9 कोष, और उत्कर्ष से योजन पृथक्त्व को जानता है, 8-9 योजन तक को जानता है। यानी वहां पर कोई स्थित है, मनुष्य खड़ा है, उसके मन की बात वो जानेंगे। जघन्य वो विपुलमति की बात लिखी वहां पर पुस्तक में छपी हुई है, एक मिनट ऊपर प्राकृत में है क्या, देखते हैं। जन उपकस खेता न मज्जी पे तभी जरा रुजुमति जान दी, यहाँ रुजुमति की बात सब चल रही, बाद में विपुलमति की बाद में बताएंगे शायद। क्योंकि रुजुमति मनपर्य ज्ञानियों को नमस्कार है ना, हाँ, तो उसमें विपुलमति की बात बाद में करेंगे सभी। अभी हम 65 पेज पर आ गए, फिर 65। हमने द्रव्य देखा, क्षेत्र देखा, जघन्य उत्कृष्ट क्षेत्र के मध्यम विकल्पों को तद व्यतिरिक्त रुजुमति, तद व्यतिरिक्त यानी मध्यम, रुजुमति मनपर्य ज्ञान जानता है। काल की अपेक्षा जघन्य से 2 और 3 भव ग्रहणों को जानता है, यानी पूर्व भव में 1 या 2 या 3 भव पहले वाले की भी बात जानेंगे, इन्होंने उस समय क्या सोचा था या आगे में क्या सोचने वाला है, इन्होंने शरीर के द्वारा क्या क्रिया की थी, क्या बोला था। किसी को ऐसे मन में प्रश्न आता है, मैंने क्या बोला था, वो भी उनको समझ में आती है। ये बात कह रहे मन की, वचन की और काया की भी सारी जो क्रियाएं हैं उसको भी वो जानता है। वो तो मति ज्ञान, वो जाति स्मरण, जाति स्मरण में आता है। कल उसमें आया था ना प्रवचन, कांजी स्वामी के प्रवचन, हजारों भोगों का भी जानता है, सभी आया था। पर उसमें ले क्या, वो संगी का संगी होना चाहिए। बीच में असंगी हो जाए बीच में, तो वो धारा, वो धारणा वाली, वो संस्कार वाली धारा टूट जाएगी उसकी। बीच में कोई ने एकेंद्रीय द्विंद्रीय आदि पर्याय की, तो संगी से संगी में जाएगा तो ही उसको पूर्व भोग का ज्ञान रहेगा ना, ये कहना चाहते। अभी हजार सागर तक तो रह सकता है ना, या पृथक सागर, बहुत सारे भव हो सकते उसमें। और वो भी बीच में देवनारकी के भी हो गए ना, इतने लगातार तो मनुष्यति रेंज के तो हो गए नहीं, बीच में देव संगी रहा। ये 48 भवों के बारे में भी बहुत प्रश्न आते। कल सोनगढ़ से एक फोन आया था, वहां क्या है कोई अभ्यास देखते, वो गुरु प्रसाद में भी आ रहे हैं ना, हमारी क्या जानने में, भूले हम कैसे सुनते थे और वही बताते थे, तो उसमें दो लेख आ गए हैं। तो वो कह रहे थे वो तो हाँ है वैसा, वो लगातार की बात वो लोगों, हाँ हाँ वो लगातार की बात थी, वो तो भूल गए कोई भी, वो उन्होंने बताई होगी, परंतु वो लगातार की बात थी, वो स्पष्ट नहीं हुई तो वो तो चली बसी वैसे, जो सुनकर वही कर। हाँ सुनने वालों ने शुरुआत में सुना, उनकी तो बात चल रही है। देखो ये तो क्षेत्र हो गया, काल की अपेक्षा जगने से दो और तीन भव ग्रहणों को जानता है, अतीत और अनागत दो ही भव ग्रहणों को जानता है, दो ये वर्तमान का समझ करो, तीसरा लिया वर्तमान भव के साथ तीन भवों को जानता है, किंतु इसमें वर्तमान भव का ग्रहण नहीं है, क्योंकि अतीत और अनागत आयु संपत असंपत भुक्त कृत प्रतिसेवित आदि नाना सूक्ष्म अर्थों से आकीर्ण भव के अच्छी तरह जान पने में विरोध आता है। क्या 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 लिखा है, ये अर्थों के लिए विशेषण लगाए, यानी सूक्ष्म अर्थों से आकीर्ण भव, भव यानी वो भव कैसे है, सूक्ष्म अर्थों से आकीर्ण, यानी सूक्ष्म अर्थों से भरे हुए। अब वो अर्थ कैसे, तो संपत है असंपत है भुक्त यानी भोगे हुए कृत किए हुए प्रतिसेवित यानी से हुए, ऐसे अनेक अर्थों से आकीर्ण भव के अच्छी तरह जान पने में विरोध आता है, यानी वो अतीत और अनागत के इतने अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, इसलिए बात बताई। उत्कृष्ट से 7-8 भव ग्रहणों को जानता है, अतीत और अनागत 7 तथा वर्तमान के 7-8 भव ग्रहणों को जानता है। नहीं नहीं नहीं, पीछे के 7 प्लस वर्तमान का एक करके 7-8 या आने वाले 7-8 इस तरह से, दोनों ओर उतनी लिमिट है उसकी। अतीत और अनागत 7 तथा वर्तमान के 7-8 भव ग्रहणों को जानता है। जघन्य और उत्कृष्ट काल के मध्यम विकल्प को तद व्यतिरिक्त रुजुमति मन परे ज्ञान जानता है। भाव की अपेक्षा, काल में उन्होंने भव की बात की, कोई ऐसा पल्य है कि सागर है, ऐसा नहीं कहा, भव की बात की, इतने भवों को जानता है। भाव की अपेक्षा, जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्यों में उसके योग्य असंख्यात पर्यायों को जघन्य व उत्कृष्ट रुजुमति जानता है। इस रुजुमति मन परे जीनों के लिए नमस्कार हो। हाँ वही होना चाहिए, जिनों के लिए नमस्कार हो। वो वहाँ मन परे ज्ञानियों को लिखा था ना, वो रुजुमति मन परे ज्ञानी जिनों को ऐसा चाहिए था। ज्ञानियों को लिखा था ना, ज्ञानी जिनों को। ये नीचे फुटनोट में ये जो जघन्य और उत्कृष्ट क्षेत्र से बताया है, देखते हैं। देखो यहाँ से पढ़ेंगे 64 के फुटनोट। क्षेत्रतः जघन्य ने गव्युति पृथक्तम, क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से कोष पृथक्त्व, उत्कर्षेन योजन पृथक्त्वस्य अभ्यंतरम न बहि, और उत्कर्ष से पृथक्त्व योजन के अंदर बाहर नहीं। गाव्य पुदत्तम अवरम उपकस होदि योजन पुदत्तम, वही बात वहां अन्य भाषा में बताइए। अभी आगे खेतो नम उज्जुमयी जहन्नेनम अंगुलस्य असंख्येज्य भागम, उक्कस उक्कोसेन अहे जाव इमी से रयण पभाय पुढ़विये वरिम हेठिल्ले खुड्डग पयरे उड्डे जाव जोईसस्य वरिम तले तिरिय जाव अंतो मनुख खित्ते अड्ढाइजेसु दीव समुद्देसु पन्न रससु कम्म भूमिसु तीसाय कम्म भूमिसु छप्पन्नाव अंतर दीवगेसु सन्नी पंचेंदियाणम पज्जत्ताणम मनोगये भावे जानई पासई। क्या कहना चाहते हैं, यानी क्षेत्र से इन्होंने अलग बात बताई है, जहन्य से अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, और उत्कृष्ट से जाव इमी से रयण पभाय पुढ़विये वरिम हेठिल्ले खुड्डग पयरे, यानी रत्नप्रभा पृथ्वी के वरिम हेठिल्ले ऊपर के नीचे से खुड्डग पयरे, यानी वो प्रस्तार बताए ना अभी खुड्डग, क्या नाम है उसका मालूम नहीं कौन सा प्रस्तार तक, उड्डे जाओ जोईसस्य वरिम तले, और ऊपर जो ज्योतिषियों का जो ऊपरीम तल है वहां तक जानते हैं। तीर्य आड़ा कहाँ तक जाते हैं, अंतो मनुख कित्ते मनुष्य क्षेत्र के अंदर तक जानते हैं। अड्डाई जैसो दीव समय ढाई द्वीप समुद्र में, पन्न रससु कम्म भूमिसु यानी कर्मभूमि कितनी है 15, तीसाय कर्मभूमि से 30 जो है वो अकर्मभूमिया है, छप्पन्नाय अंतर दिवगेश अंतरद्वीप है वो 56 है, ये कैसे 48 56 कैसे लिए, भोग भूमि है ना, नहीं पर ये 96 होते हैं ना, अंतरद्वीप 96 होते हैं, छप्पन्नाए संगी पंचेंद्रियाणम पज्जतानम, यानी वहाँ जो स्थित संगी पंचेंद्रिय है उनके पर्याप्तों के मनोगत भावों को जानते हैं। भोग भूमि तत्र नंदी सूत्र, नंदीश्वर सूत्र क्या है आप में है क्या? अच्छा पूरा सूत्र है इसीलिए, तो उनमें ये बात बताइए। यानी वो जो यहाँ जघन्य अंगुल का असंख्यात्व भाग हो उसमें डिफरेंस है, यानी ये जो त्रिलोक ये श्वेतांबरी सूत्र है उनमें जो डिफरेंस है वो यहाँ, क्योंकि वो छप्पन लिखा है ना अंतर्दीव, और ऊपर भी जघन्य से अंगुल के असंख्यात भाग बताए, वो तो जघन्य का वो तो चक्षु इंद्रिय की बात है, वो भी अंगुल का असंख्यात भाग ही है, परंतु यहाँ तो अलग से उसकी बात नहीं की है, वो तो द्रव्य की जघन्यता थी क्षेत्र की नहीं थी। हाँ वो नहीं है, वो क्षेत्र से जघन्य तो पृथक तो कोष ही लेना, वो उन्होंने द्रव्य की जघन्य की बात की अंगुल का असंख्यात भाग। उनका ही है, हाँ अभी हम आगे के पेज पर ला दें 66 पर, हाँ छोड़ देते हैं क्योंकि हमने जाना है ना कहाँ अपना जगन ने उत्कृष्ट जान लिया। हाँ नमो व्यूवन मदिनम, मदिनम कहने से वो हिंदी में बराबर आता है, विपुल मती जिनों को नमस्कार हो, क्योंकि सूत्र में तो वो तो जिना की अनुवृत्ति लेते हैं, दूसरे की मति में स्थित पदार्थ मति कहा जाता है, विपुल का अर्थ विस्तीर्ण है। शंका, विपुलता किस कारण से है? जैसा पदार्थ है उस प्रकार मन को प्राप्त होने से, जैसा पदार्थ उसके विरुद्ध मन को प्राप्त होने से, और दोनों प्रकार से भी मन को प्राप्त होने से, ये समझे ना, वो किसी का सरल मन है और किसी का टेढ़ा वक्र मन जिसको कहते हैं, ऐसा भी लेना उसका। यथार्थ वचन को प्राप्त होने से अयथार्थ वचन को प्राप्त होने से, और उभय प्रकार से भी उसमें प्राप्त होने से, देखो जो रुजुमति है उसका विषय तो विपुलमति भी जानेंगे, पर विपुलमति एक्स्ट्रा भी जानेंगे, रुजुमति सरल मन को वचन को काय को जानते हैं, विपुलमति को नहीं, विपुलमति संबंधी ज्ञान की बात है, उसके विषय को, वो अयथार्थ मन वचन काय को नहीं जानेंगे ये कहना चाहिए, पर जो विपुलमति वो दोनों विषयों को जानेंगे, इसलिए यथार्थ अयथार्थ दोनों लिए, यथार्थ काय को प्राप्त होने से अयथार्थ काय को प्राप्त होने से, तथा उन दोनों प्रकारों से भी वहां प्राप्त होने से विपुलता है। विपुल है मति जिसकी वह विपुल मति कहा जाता है, विपुल मति के संबंध से जिन भी विपुल मति कहलाते हैं, रुजु या अनरुजु, रुजु यानी सरल, अनरुजु यानी वक्र असरल, मन वचन व काय में स्थित उन दोनों ही प्रकारों से, उनको अप्राप्त और अर्ध प्राप्त वस्तु को जानने वाले, यानी वो प्राप्त वस्तु को जानेंगे, उसमें मन वचन काय में जो प्राप्त है उसको जानने वाले वो रुजुमति कहेंगे, अभी उसमें जो अप्राप्त है या अर्ध प्राप्त है उसको भी जानने वाले विपुलमति है। वो अलग अलग हो गए, मुनिराज है, मुनिराजों को यहाँ रुजुमति जिन कह रहे हैं और विपुलमति जिन कह रहे हैं, ना विपुलमति की बुद्धि और एक्सटर्न, वो उनका जो विशुद्धि ज्यादा है उनका क्षोभम भी ज्यादा है, और वो विपुलमति तो तद्भव मोक्षगामी है। हाँ। देखो प्राप्त अप्राप्त और अर्ध प्राप्त वस्तु को जानने वाले विपुल मति के जघन्य उत्कृष्ट और तद व्यतिरिक्त अर्थ यहाँ मध्यम है हा? जो जघन्य भी नहीं उत्कृष्ट नहीं वो मध्यम है। द्रव्य क्षेत्र व काल व भाव की प्ररूपना करते हैं। द्रव्य की अपेक्षा वह जघन्य से एक समय में होने वाली इंद्रिय निर्जरा को जानता है। जो ऋजुमती का जो उत्कृष्ट विषय था वो इसका जघन्य विषय है। अच्छा, होने वाली इंद्रिय निर्जरा को जानते हैं। एक समयम इंद्रिय निर्जरम जान दी ऊपर लिखा है ना। ये तो उसका जघन्य हुआ। नहीं, रुजुमती जरूरत नहीं होके जाएंगे। हाँ, उनका जो रुजुमती का जो उत्कृष्ट था वो इनका जघन्य है। इसलिए एक समय में होने वाली इंद्रिय निर्जरा को जानता है। शंका, रुजुमती का उत्कृष्ट द्रव्य ही उससे बहुत श्रेष्ठ विपुलमति का विषय कैसे हो सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि अनंत विकल्प रूप चक्षु इंद्रिय की अजघन्य अनुत्कृष्ट निर्जरा के रुजुमती द्वारा विषय किए गए उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा उसके योग्य हानि को प्राप्त एक समय रूप इंद्रिय निर्जरा का द्रव्य विपुलमति का विषय माना गया है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, रुजुमति जिसको जानता है, ये जो चक्षु इंद्रिय की जो अजघन्य मध्यम निर्जरा जो बताई थी रुजुमति का विषय, अब द्रव्य की अपेक्षा और सूक्ष्म तक को जानेगा ना विपुलमति, तो कहते हैं इंद्रिय जो निर्जरा के वो भी हिनादिक बहुत उसमें विकल्प हो गए, अनंत विकल्प है, तो जो रुजुमति का विकल्प है उससे भी यथा योग्य हीन इसका विकल्प है, ये कहना चाहते। उसको ही उतना ही नहीं लेना, उसे भी छोटा लेना। रुजुमती का जो उत्कृष्ट है उस द्रव्य से भी बहुत छोटा इनका द्रव्य है, उसके योग्य हानि को प्राप्त बताए हैं उत्कृष्ट द्रव्य के ज्ञापनार्थ। अभी उत्कृष्ट द्रव्य कहने से और छोटा छोटी की ओर चला जाना, उसके योग्य असंख्यात कल्पों के समयों को शलाका रूप से, शलका हुआ शलाका रूप से स्थापित करके, जैसे हमने परमावधि के भेदों में हर भेद में द्रव्य की अपेक्षा ध्रुवार का भाग देते गए थे, आपको याद होगा हा? यहाँ पर भी असंख्यात कल्पों के जितने समय है, एक कल्पकाल में 20 कोड़ा कोड़ी सागर होते हैं। अब एक सागर में कितने असंख्यात करोड़ों वर्ष हो गए, उसमें कितने सेकंड है, किसने समय हो गए, तो समय की असंख्यात जो मैग्नीट्यूड है उसको ख्याल में लेना। तो कहते हैं असंख्यात कल्पों के समयों को शलाका रूप से स्थापित करके, एक बाजू उनकी संख्या लिख देना, फिर क्या करना, मनोद्रव्य वर्गणा के अनंत वे भाग का विरलन कर। मनोवर्गणा का अनंतवा भाग जो हमने ध्रुवहार स्थापित किया था देशावधि वगैरह परमावधि सर्वावधि में, विसरसोपचय रहित आठ कर्म संबंधी अजघन्य अनुत्कृष्ट एक समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर उनमें एक खंड द्रव्य का द्वितीय विकल्प होता है। यानी यहाँ जो अलग अलग मन परिज्ञान के भेद हो गए उसमें द्रव्य की अपेक्षा दूसरा विकल्प कौन सा, ध्रुवाहार से भाग देने पर जो आएगा वो इस समय शलाका राशि में से एक कम करना चाहिए। इस प्रकार इस विधान से शलाका राशि समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। इनमें अंतिम द्रव्य विकल्प को उत्कृष्ट विपुलमति जानता है। यानी इतने असंख्यात बार उसको भाग देते 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 ध्रुवार से भाग देते देते उसका द्रव्य रह जाएगा। जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य के मध्यम विकल्पों को तद व्यतिरिक्त विपुलमति जानता है। हाँ जगन ने बहुत सारे भेद बताए। क्षेत्र की अपेक्षा विपुल मति का जगन्य से योजन पृथक्त्व विषय है। ऋजुमति का उत्कृष्ट और विपुल मति का जगन्य क्षेत्र यहाँ समान नहीं है, क्योंकि योजन पृथक्त्व में अनेक भेद देखे जाते हैं। पृथक्त्व कहने से उसमें हीना दिखता कुछ भी होती है ना। वहाँ अगर हम 8-9 कहेंगे तो यहाँ या 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। उत्कर्ष से वह मानुषोत्तर पर्वत के भीतर की बात जानता है, बाहर की नहीं। तात्पर्य यह है कि 45 लाख योजन घन प्रतर को जानता है। घन प्रतर बताए, स्क्वायर लिया, वृत्ताकार नहीं लिया। परंतु आगे लिखा है उन्होंने, वो उसके जो चतुष्कोण में भी जानते हैं, ऐसे स्पष्ट शब्दों में आया है। नीचे लिखा है देखो, 3 नंबर की फुटनोट, नरलोयेत्तिय वयनम, अने नरलोक में इस वचन से विखंभन यामयम न वट्टस्य, उसका विष्कंभ बताया। विष्कंभ ने उसकी जो 45 लाख योजन प्रमाण, उसकी लंबाई और चौड़ाई, न वट्टस्य यानी वृत्ताकार नहीं बताया, गोलाकार नहीं बताया। तम्मा तक घन पदरम, उसमें उसका जम्मा तक घन पदरम, उसका घन प्रतर मन पज्जव खेतम उद्दिठम, वो घन प्रतर उसका क्षेत्र बताया जाता है। आकाश की एक श्रेणी ही जानता है, ऐसा कितने आचार्य कहते हैं। जैसे अवधि ज्ञान में भी हमने ये आकाश श्रेणी की उन्होंने चर्चा की थी, किंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर मनुष्य एवं विद्याधराधिकों में विपुल मति मन परे ज्ञान की प्रवृत्ति न हो सकने का प्रसंग आता है। क्योंकि अगर एक ही आकाश प्रतर में जानेंगे, एक श्रेणी में जानेंगे, तो विद्याधरों की जो श्रेणियां ऊपर है उनको कैसे जानेंगे, ये कहना चाहते हैं। उनके मन में स्थित को भी जानेंगे ना, यानी कोई मुनिराज नीचे बैठे हैं तो पर्वत के ऊपर कोई मनुष्य है तो उनकी बात जानेंगे कि नहीं जानेंगे, समझ में आती ना। ये एक ही श्रेणी में जानते हैं, बात नहीं होती। मानुषोत्तर शैल के भीतर ही स्थित पदार्थ को जानता है, उसके बाहर नहीं, ऐसा वर्गणा सूत्र द्वारा निर्दिष्ट होने से मानुष्य क्षेत्र के भीतर स्थित सब मूर्त द्रव्यों को जानता है, उससे बाह्य क्षेत्र में नहीं, ऐसा कोई आचार्य कहते। परंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर मानुषोत्तर पर्वत के समीप में स्थित होकर बाह्य दिशा में उपयोग करने वाले के ज्ञान की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग आता है। यदि कहा जाए कि उक्त प्रसंग आता है तो आने दीजिए, सो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके उत्पन्न न हो सकने का कोई कारण नहीं है। क्षोभशम का अभाव उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं है, क्योंकि उसके बिना मानुषोत्तर पर्वत के अभ्यंतर दिशा विषयक ज्ञान की उत्पत्ति भी घटित नहीं होती है। अतः क्षोभशम का अस्तित्व सिद्ध होता है। मानुषोत्तर पर्वत से व्यवहित होने के कारण परभाग में स्थित पदार्थों में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि असंख्यात अतीत व अनागत पर्यायों में व्यापार करने वाले तथा अभ्यंतर दिशा में पर्वतादिकों से व्यवहित पदार्थों को भी जानने वाले मनपरे ज्ञानी के अनिंद्रिय प्रत्यक्ष का मानुषोत्तर पर्वत से प्रतिघात हो नहीं सकता। वो पर्वत है इसलिए वो उसके पार नहीं जानते, ऐसी बात नहीं हो सकती। अतएव मानुषोत्तर पर्वत के भीतर यह वचन क्षेत्र का नियामक नहीं है, किंतु मानुषोत्तर पर्वत के भीतर 45 लाख योजनों का नियामक है, क्योंकि विपुलमति मन परे ज्ञान के उद्योत सहित क्षेत्र को घनाकार से स्थापित करने पर 45 लाख योजन मात्र ही होता है, अथवा उपदेश प्राप्त कर इस विषय का व्याख्यान करना चाहिए। इन वो पर्वत के कारण रुका ऐसा नहीं है, 45 लाख योजन विष्कम्भ तक वो जानते हैं। दोनों सेम ही है, यानी वो इंद्रिय के द्वारा नहीं, अनिंद्रिय प्रत्यक्ष है। हाइट मानुष क्षेत्र इतनी ले सकते हैं। काल की अपेक्षा वह जघन्य से 7-8 भव ग्रहणों को और उत्कर्ष से असंख्यात भव ग्रहणों को जानता है। ये तो मन परे ज्ञानी की बात है। भाव की अपेक्षा जो जो द्रव्य ज्ञात है उस उसके असंख्यात पर्यायों को जानता है। इस प्रकार से विपुलमति मन परे ज्ञानी जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। अब विपुलमति जिनों को नमस्कार करके, ये तो मति ज्ञान के तो भेद हो गए ना, ये मति ज्ञान हुआ, फिर मन परे ज्ञान हुआ। शुद्ध ज्ञानी जिनों को नमस्कार करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, उसके लिए 12वां नंबर का सूत्र, नमो दशपूर्वी याणम, दशपूर्विक जिनों को नमस्कार हो, यानी जिनका 10 पूर्व संबंधी ज्ञान है, 11 अंग और 12वें में से 10 पूर्वों को जान। यहाँ भिन्न और अभिन्न के भेद से दशपूर्वी दो प्रकार के, देखो भिन्न दशपूर्वी और अभिन्न दशपूर्वी कहते हैं। भिन्न यानी उनको वो तो उसका ज्ञान होकर वो छूट जाता है, उसको भिन्न कहते हैं, यहाँ शायद लिखा होगा। उनमें 11 अंगों को पढ़कर पश्चात परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका, ये अंतिम जो 12वां दृष्टिवाद है उसके भेद है। इन 5 अधिकारों में निबद्ध दृष्टिवाद के पढ़ते समय उत्पाद पूर्व से लेकर पढ़ने वालों के दशम पूर्व विद्यानुप्रवाद के समाप्त होने पर अंगुष्ठ प्रसेनादि 700 क्षुद्र विद्याओं के से अनुगत रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं भगवान क्या आज्ञा है ऐसा कहकर उपस्थित होती, उनके वो सारी विद्याएं प्राप्त होती। यानी 12वें अंग के 10वें पूर्व तक पढ़ाई हुई उनकी, तो विद्यानुवाद में ये जो अन्य भी विद्याएं हैं ना, वो तो वशीकरण वगैरह मैली विद्या जिसको कहते हैं, ऐसी भी विद्याएं वहाँ उनके स्वयं में प्राप्त हो जाती है, और वो हाथ जोड़कर उन विद्याओं की देवताएं उनके सामने आकर आज्ञा पूछती है कि क्या आज्ञा है। इस प्रकार उपस्थित हुई सब विद्याओं के लोभ को जो प्राप्त होता है वह भिन्न दशपूर्वी है, यानी वो जो विद्याएं प्राप्त हुई है उसका यूटिलाइज करना चाहता है, गिर जाता है। रुद्र वगैरह भी होते हैं, किंतु जो कर्मक्षय का वो कर्य हुआ कर्मक्षय का अभिलाषी होकर उनमें लोभ नहीं करता वह अभिन्न दशपूर्वी कहलाता है। यानी वो भले उनको ज्ञात हो जाए परंतु उससे कोई मतलब नहीं, वो एक ज्ञान का गेय होकर रह जाता है, परंतु उनमें ऐसा कोई उसमें लोभ जागृत नहीं होता, इच्छाएं नहीं उत्पन्न होती कि मैं अभी इसका कुछ यूटिलाइजेशन करूं। उनमें अभिन्न दशपूर्वी जिनों को नमस्कार करता हूँ, यह सूत्र का अर्थ है। हाँ, अभिशत ज्ञान की बात है। तो यहाँ पूछते हैं भिन्न दशपूर्वियों की व्यावृत्ति कैसे होती, जैसे अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी, तो कहाँ यहाँ दशपूर्वी से भिन्न श्रोतृत्व को आपने निकाल कैसे दिया, अभिन्न को कैसे ग्रहण किया, ये उनका प्रश्न है। समाधान, जिन शब्द की अनुवृत्ति होने से उनकी व्यावृत्ति होती है। क्यों कहा, दशपूर्वी के साथ जिन शब्द लगाया जो दशपूर्वी जिन कहने से वो भिन्न दशपूर्वी वालों को निकाल दिया। भिन्न दशपूर्वियों के जिनत्व नहीं है, क्योंकि जिनके महाव्रत नष्ट हो चुके हैं उनमें जिनत्व घटित नहीं होता। महाव्रत रहे नहीं अभी, क्योंकि अभी उसके जो विद्याओं के जो कोई उपयोग करेगा उनके कहाँ महाव्रत है। हाँ, अभिन्न दशपूर्वी को लेना, भिन्न दशपूर्वी को नहीं, वो तो छूट गए, उनका सम्यक्त्व भी छूट गया, महाव्रत भी छूट गए सब। शंका, आचारांगादि अधस्तन अंग और पूर्व के धारकों को नमस्कार क्यों नहीं किया? ये तो 12वें अंग में से वो 10 पूर्वियों को ही क्यों नमस्कार किया? नीचे भी वो श्रुत ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं ना, उनको क्यों नहीं नमस्कार करते? समाधान, नहीं, क्योंकि उनको भी नमस्कार किया ही है, क्योंकि वे इनमें गर्भित हैं। क्योंकि जो 10 पूर्वी वाले हैं वो उनके नीचे के सारे ज्ञान उसमें गर्भित ही है, ये कहना चाहते। शंका, 14 पूर्वों के धारकों को पहले नमस्कार क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं, क्योंकि जिन वचनों पर प्रत्यय स्थान अर्थात विश्वास उत्पादन द्वारा दशपूर्वियों के त्याग की महिमा दिखलाने के लिए पूर्व में उन्हें नमस्कार किया है, अथवा श्रुत परिपाटी की अपेक्षा पहले दशपूर्वियों को नमस्कार किया है, यानी पहले दशपूर्वी होकर फिर 14 पूरी हो जाएगा, इसलिए उसको भी नमस्कार किया पहले। नमो 14 पूर्वियाणम, 14 पूर्विक जिनों को नमस्कार हो। यहाँ जिनों को इस पद की अनुवृत्ति आती है। समस्त श्रुत ज्ञान के धारक 14 पूर्वी जिन है, उन 14 पूर्वी जिनों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अभिप्राय है। शंका, शेष अधस्तन पूर्वियों को नमस्कार क्यों नहीं किया? 4 पूर्व, 5 पूर्व, 10, 9 पूर्व, उसको नहीं क्यों नमस्कार किया? समझ, नहीं, क्योंकि उनको भी नमस्कार किया ही है, क्योंकि अधस्तन पूर्वों के बिना 14 पूर्व घटित ही नहीं होते। 14 पूर्व के उसको पूर्व के पूर्व का अभ्यास होने के बाद ही क्रम से उसके आगे आगे के पूर्व आते हैं। शंका, 14 पूर्व का ही नाम निर्देश करके किसलिए नमस्कार किया गया? तो उन्हीं का नाम क्यों लिया? हर एक एक का लेते थे। समाधान, नहीं, क्योंकि विद्यानुवाद प्रवाद की समाप्ति के समान 14 पूर्वों की समाप्ति में भी जिन वचन पर विश्वास देखा जाता है। शंका, 14 पूर्व की समाप्ति में कौन सा विश्वास है? 14 पूर्वों को समाप्त करके रात्रि में कायोत्सर्ग से स्थित साधु की प्रभात समय में भवनवासी वानवेंतर ज्योतिषी और कल्पवासी देवों द्वारा शंख, काहला और तूर्य के शब्द से व्याप्त महापूजा की जाती है। इन दो स्थानों में जिन वचनों पर विश्वास पाया जाता है, वो 10 पूर्वी का विश्वास इसलिए कि वो छूटता नहीं, उनका वो चालू रखते, इसलिए वो उसको नमस्कार किया। और यहाँ पर 14 पूर्वों का जो समाप्त होती है, तो रात्रि में कायसिर्ग में स्थित साधु के प्रभात में वो भवनवासी वानवेंतर ज्योतिषी कल्पवासी इनके द्वारा पूजन होती है। शंका, जिन वचन की अपेक्षा से सब अंग और पूर्व समान है, अतः उन सबका नाम निर्देश करके नमस्कार क्यों नहीं किया गया? नहीं, क्योंकि जिन वचन रूप से सब अंग और पूर्वों में सदृशता के होने पर भी विद्यानुवाद प्रवाद, विद्यानुप्रवाद ये 10वां और लोक बिंदु सार ये 14वां महत्व है, क्योंकि इनमें ही देव पूजा पाई जाती है। 14 पूर्व का धारक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, और उस भव में असंयम को भी नहीं प्राप्त होता, यह इसकी विशेषता है। उपाध्याय भी होते हैं, अन्य भी साधु होंगे ना उसमें, जो उनको सिखा नहीं रहे परंतु अन्य साधुओं के भी चौथपुरो तो हो सकते हैं, कहते नहीं वो तो ना मिथ्यात्व में गिरते हैं और ना ही असंग। दस वाले जा सकते हैं क्योंकि उनके तो छूट ही गए ना, हाँ वो तो प्रतिपात हो गए उनका। अब यहीं रुकेंगे हम, कल नया सूत्र पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नहीं सदा देत हो। मनीषा।